ओम शांति। हम सबके बीच परम आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। नासिक के एक संगठन में राजू भाई जी आपका दिल से स्वागत। आज एक ऐसा व्यक्तित्व हम सबके बीच उपस्थित है जिन्होंने दादियों की समीप पालना और दादियों की समीपता का जीवन में अनुभव किया है, जिनके पास मुरली का मंथन, चिंतन, स्व अध्ययन वो एक नैसर्गिक ताकत है। आपको ज्ञान तो 69 में मिला, परंतु 72 में आप यह मधुबन में हमारे हेडक्वार्टर में सेवाओं के प्रति समर्पित हुए। 76 में तक आपने सिंधी भाषा सीख ली और तब से विशेष रूप से मुरली डिपार्टमेंट में मुरली टाइप करना, दादियों के पत्र टाइप करना, पत्र पुष्प प्रतिमास हम सबको सौन्नति के लिए दादियों की तरफ से भेजना, ये 72 से आप अलग अलग लेवल पे करते आए हो। जब अव्यक्त बाप दादा की पधरावनी होती रही तब अपनी टाइपिंग की तीव्रता से शीघ्रते शीघ्र बाबा की वाणी पूरे यज्ञ को, पूरे विश्व को मिले, ये आपका पुरुषार्थ रहा। और जब अव्यक्त पालना का भी रिवाइज कोर्स चल रहा है तब जोन के अनुरूप, समय के अनुरूप रिवाइज मुरली को सिलेक्ट करके हम सबको पुरुषार्थ में एक नया एक्सेलेटर देने का कार्य आप कर रहे हैं। ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम्य को दत्तक लेना और शाश्वत योगी खेती की प्रेरणा स्रोत आप रहे हैं। उसके एक नीचे शांतिवन के समीप एक उसका रोल मॉडल एग्जाम्पल आपने तैयार भी करवाया है और साथ साथ उन किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है जो अपने वहां शाश्वत योगी खेती करते हैं। तो एक बहुत बड़ा बाद में शुरू हुई ग्राम विकास प्रभाग की विंग, उसको एक अलग स्तर पर ले जाने में आपका भगीरथ पुरुषार्थ रहा है। ज्ञान सरिता, ज्ञान मोती, ज्ञान के अनमोल रतन जैसी किताबों के आप ऑथर भी रहे हो और सभी स्थानों पर, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, मुरली एवं फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को आप संभालते हैं। मैं तो कहूंगी कोरोना के टाइम हम सब ने राजू भाई जी को बहुत समीपता से देखा है, भले देखा मोबाइल में और टीवी में है, लेकिन उनके विचारों को, उनके पुरुषार्थ की गति को, उनके महामंथन को हम सब ने सुना है। तो चलो आज अपने आप को तैयार कर ले, आदरणीय राजू भाई का वो क्लास आज हम सुनने जा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन, देश विदेश की सेवाओं के साथ यज्ञ में रक्षक बन के, यज्ञ के सूत्रधार बन करके अनेकों को प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। सभी ने पांडव भवन की बहुत अच्छी भट्टी की, मौसम भी कितना अच्छा है, भट्टी के अच्छा लगा ना सबको, बाबा की तपस्या स्थली है जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी जगत अम्बा माँ ने हमारी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि ने कितने वर्षों तक तपस्या की है, इसलिए हम कहते हैं बाबा के इस मधुबन घर में योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगा ही रहता है, योग टूटता ही नहीं है, क्योंकि हर कण में बाबा की याद समाई हुई है। जिधर जाओ जिधर बैठो, इधर बाबा बैठते थे, इधर खेलते थे, इधर बच्चों से मिलते थे, इधर मुरली सुनाते थे, इधर पत्र लिखते थे। ये उनकी चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि है, इसलिए सभी को बहुत आकर्षण होती है कि हमको भी मधुबन में भट्टी का चांस मिल जाए। और अभी भी 3-4 साल की पेंडिंग लाइन है, कोई कहता है हमको टर्न दिला दो, कहते हैं 3 साल के बाद बोलना, बुक है सब। तो इस स्थान का कितना महत्व है, और यहाँ पर आप सब ने 3 दिन सुबह से रात तक खूब क्लासेज भी की, भट्टी भी की, बड़े अच्छे अनुभव किए होंगे। लेकिन इन सबके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, जो इतनी हम भट्टियां करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या लक्ष्य है, किस लिए करते हो? आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना मेन जो लक्ष्य है वो है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ईश्वरीय नियमों को, कुछ मर्यादाओं को, दिनचर्या को दृढ़ता के साथ पालन करना, क्योंकि जहाँ पर भी कोई नियम मर्यादाएं उल्लंघन होते हैं, टूटती हैं, वहाँ ही पवित्रता की सब्जेक्ट में गिरावट आने लगती है। इसलिए संगम युग पर बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को मर्यादा का कंगन बांधा। रक्षाबंधन है ना, अभी राखी आ रही है। रक्षाबंधन कहते हैं, बंधन में बंधना नहीं है, लेकिन ये रक्षा सूत्र जो सबको बांध देता है, अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति सब में पवित्रता की निजी धारणा हो जाए। क्योंकि बहुत समय तक आधा कल्प आत्मा देह मान में रही है, द्वापर युग से देह के साथ रहते संग का रंग लगते लगते पूरा पतित बन गई, विकारी बन गई, और थोड़े से समय में आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना, उसके लिए मर्यादाओं को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो हमारे देवताओं का गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये डिग्री तो देवताओं के पास है, लेकिन ये डिग्री लेने के लिए ब्राह्मणों ने मेहनत की है। और जब ये डिग्री हमें संपूर्ण प्राप्त हो जाती है, तब हम ट्रांसफर हो जाते हैं, ब्राह्मण ही देवता बन जाते हैं। तो सभी इस डिग्री को लेने के लिए सवेरे से रात तक बाबा ने हर बच्चे को श्रीमत दे करके, श्रेष्ठ राय दे करके बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आप अमृत वेले से रात तक बाबा की मुरलियों में नोट करेंगे तो एक एक बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाप, शिक्षक और सतगुरु तीनों रूपों से भिन्न भिन्न रीति की श्रीमत आज्ञाएं हम सब बच्चों को मिली हैं। और कहते हैं श्रीमत सिरमाथे, अगर श्रीमत को यथार्थ रीति से समझ गए और उस पर चलने लगे तो जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम अपने आप बन जाएगी। अमृत वेले उठना है, सबसे पहले बाबा से प्यार भरी स्नेह भरी दृष्टि लेते गुड मॉर्निंग कहनी है। कल की मुरली याद है ना, कितना प्यार से बाबा कहते बच्चे तुम पावन बन जाओगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत प्यार से आँख खुलते ही कहो मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। तो ये बाबा की हम ब्राह्मण बच्चों के लिए पहली श्रीमत है। पहले संकल्प में बाबा ही सामने आए और दिल से निकले मेरा बाबा गुड मॉर्निंग बाबा। फिर उसके बाद हम तैयार होते हैं तो उसके लिए भी श्रीमत दी बाबा ने कि ब्राह्मण हो आपको ये जो शरीर मंदिर के रूप में मिला है इस मंदिर को बहुत साफ रखना, स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, ये हर एक के लिए बाबा की मर्यादा है, नियम है। क्योंकि अगर हम ब्राह्मण कहलाते हैं तो ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण माना ही स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, और स्वच्छता इस शरीर के मंदिर की बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्वच्छ होना, स्नान करना, साफ स्वच्छ कपड़े पहनना, ऐसे नहीं रात वाले फिर से पहन लेना, बहुत कुछ इसके लिए बाबा की श्रीमत है कि इस मंदिर में बाबा की बहुत प्रिय मूर्ति जिसके बाबा कीर्तन करते हैं, जिसकी महिमा बाबा गाते हैं, वो आत्मा मूर्ति शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। इसलिए इसको बहुत स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, स्वस्थ भी रखना है। उसके लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं अपने मन और तन को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो उसकी बहुत अच्छी विधि है सवेरे 4 से 8 का समय। 2 घंटा शरीर को दे दो, 2 घंटा आत्मा को दे दो। शरीर को भी स्नान कराना, एक्सरसाइज कराना, प्राणायाम करो, सैर करो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर कलयुग का है, कई रोग, कई वातावरण का, जलवायु का जल्दी असर पड़ता है, उसको ठीक रखना, उसको स्वस्थ रखना, उसका हम सबको बहुत ध्यान देना। नहीं तो शरीर बेकार हो गया तो आत्मा कितनी भी शक्तिशाली हो कुछ नहीं कर पाती है। ये ऐसा आधार है, बंधन नहीं है लेकिन आधार ऐसा है जिसको हमें बहुत संभाल के ठीक रख करके चलना है, इसी से कमाई होती है। इसलिए इस पर ध्यान देना, ये प्रभु की अमानत मिली है। शरीर भी संगम पर अमानत है, आत्मा इसमें रह करके भगवान को याद करती है, उनके महावाक्य सुनती है, उनकी सेवाएं करती है, तो इसके लिए इस पर बहुत ध्यान देना है। इसमें अलबेला नहीं बनना, सोए नहीं रहना है, समय पर उठना, समय पर स्नान करना, समय पर एक्सरसाइज करना। अगर ध्यान रखते हैं तो शरीर बहुत ठीक समय पर काम देता है। और उसके पश्चात फिर बाबा की मुरली सुनते हैं, भगवान आवाज सुनते हैं, जो हमारे लिए सारे दिन का एक खुराक है, भोजन है। सकारात्मक चिंतन बाबा के महावाक्यों से मिलता है। 1-2 बातें भी अगर याद कर लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। मुरली ऐसे सुनना है जो बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट बन करके स्टडी करनी, ये तो नहीं मैंने तो सुन लिया है, मुझे तो पता है बाबा क्या कहेगा। रोज की मुरली ग्रंथ का वचन है, जैसे कहते हैं ना ग्रंथ का वचन खोलो और वही बात हो जो होने वाली है। जो परीक्षाएं, जो बातें आपके सामने आने वाली हैं, अगर आपका बहुत अच्छा बाबा से कनेक्शन ठीक है, उसी दिन की मुरली में उसका उत्तर होगा। ऐसा अनुभव किया ना, ये तो बाबा की चमत्कारी मुरली है। कभी कभी कोई मेरे को कहते हैं आज की मुरली आपने कैसे निकाली? हमने कहा मैंने तो 3 महीने पहले बनाई थी, मुझे थोड़ी पता था आज आपके आगे क्या पेपर आएगा। बाबा जानता है बच्चों को क्या चाहिए। उसी तरह की वरदान स्लोगन, उसी तरह की कोई न कोई धारणा की बातें मुरली में आ जाती। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी हो जाए सवेरे सवेरे बाबा की मुरली जरूर सुनो, पढ़ो सुनो, क्लास में जाकर के सुनो तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की पवित्र बहनों के द्वारा महावाक्य जो भगवान के मिलते हैं कानों में जाते हैं, उसका अपना प्रभाव होता है। फिर कर्म में कर्मयोगी बन करके रहो। कर्म करने की सबको छुट्टी है, जो भी कर्म है शरीर निर्वाह के लिए जो सेवाएं मिली हैं हर सेवा के लिए बाबा की छुट्टी है, लेकिन कर्मयोगी बन करके कर्म करो, बाबा को साथी बना करके कर्म करो, कर्म पूरा हुआ समर्पित करो, बाबा शुक्रिया आपका। करने के पहले भी बाबा को आह्वान करो और पूरा होने के बाद बाबा के आगे समर्पित करो। फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, जो बाबा कराएगा अच्छा ही होगा। इसलिए बहुत हल्के रह करके कराने वाला करा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रहती है स्मृति, कराने वाला करा रहा है। संगम युग पर हम सब ने बाबा को अपनी जीवन समर्पित की। भले आप कहेंगे हम तो अपनी प्रवृत्ति में हैं, घर गृहस्थ में है, कहीं भी रहो, बुद्धि से तो समर्पित हो ना। तन समर्पित करना अलग चीज है, कोई तन समर्पित करे और बुद्धि बाहर भटक रही हो तो उसका क्या फायदा। और बाहर रह करके मन से तन से बुद्धि से यही समझता बाबा ने ये कार्य हमें दिया है, ये बाबा के सेवा के लिए हम आए, समर्पित बुद्धि से कर्मयोगी बन करके कर्म करना है। शरीर को चलाने के लिए बहुत शुद्ध सात्विक जो आवश्यक है, अनासक्त भाव से भोजन करना, आसक्त होकर के नहीं। आसक्ति वाले तो सदा ही बीमार रहते, ये खाएं ये खाएं ये खाएं। दीदी हमारी, दीदी मनमोहिनी बहुत परीक्षा लेती थी। दीदी मनमोहिनी का मास पूरा हुआ ना कल, दीदी की पालना जब मिली तो इतना उनके अंदर एक एक बात, नियम मर्यादाएं क्या होती हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, तो इस बचपन में आ गए, स्कूल की लाइफ से आ गए, एक एक बात के लिए कैसे देखना, कैसे बैठना, कैसे लोगों से बात करना, कैसे चलना फिरना है, एक एक की बात मर्यादा के रूप में सिखाई। एक बार क्या किया, यहाँ पर पांडव वन में छोटा हाल ही था, हिस्ट्री हाल है ना, वही था। तो दीदी बड़ी गंभीर भी थी, नियम मर्यादाओं में बहुत थी, लेकिन रमणीकता बहुत थी, मनोरंजन कराने में बाबा को भी हंसाती, हम सबको भी कुछ न कुछ खेल कराती। तो एक बार कहती है, वैसे बहुत इकोनॉमी, कहती 108 प्रकार का भोग लगाएंगे और 108 प्रकार का भोजन खिलाएंगे सबको। अब 108 प्रकार में कितना होगा वैरायटी, हर प्रकार के फल थे, ड्राई फ्रूट थे, टोलियां थी, भोजन था, सब ऐसे थाल ऐसे सजा करके सबके आगे रखा, और ऊपर से दृष्टि दे रही है, देख रही है कि आसक्ति किस में जाती है इनकी, कौन सी चीज पहले खाते हैं। तो दीदी कहती है, देखो आसक्तियां नहीं चाहिए, भले 56 प्रकार 108 प्रकार का भोजन है, बाबा को भोग लगाओ, बाबा से बातें करो, पहले उनको खिलाओ जो खा सकते हो, बहुत प्यार से खाओ, फेंकना नहीं है, जो भी है थैलियां दे दिया सब ले जाओ, फिर बाद में खाना, सूखा है सूखा सूखा, एक एक चीज पर ध्यान। ईश्वरीय यज्ञ की मर्यादाएं क्या होती हैं, खान पान कैसा होता है, और योग युक्त स्थिति में कैसे रह करके खाना है भोजन। जब हम लोग भंडारे में खाते थे तो दीदी ऐसे पैदल करने निकलती थी, और पता चल जाए लोगों को कि दीदी आ रही है तो पूरे भंडारे में सन्नाटा हो जाता था, कोई नहीं बोल रहा, चुप सब, क्या हो गया भाई, दीदी आ रही है, सबको चेक करेगी, कौन कहाँ बैठा है, कौन खा रहा है, कौन बना रहा है, कौन खड़ा है, कौन बातें कर रहा, एक एक बात पर ध्यान, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। और एक एक बात में कहीं भी कोई बात कर रहा है, भाई कैसे दीदी तक ये बात चली गई कि मैं यहां पर बात कर रहा था खड़े होकर के, वो आकर के सीधा बुलाएगी, इधर आओ, क्या बातें कर रहे थे। बाबा के घर में बाबा के बच्चों के लिए कोई गुप्त बातें होती है, छिप करके करने वाली बातें, इसमें भी कुछ न कुछ विकार होते हैं, कोई न कोई आसक्तियां होती हैं। इसलिए बातचीत कैसे करनी है, लोगों के सामने जाना, यहाँ पर जब पहला पहला शिविर शुरू हुआ 73 में, ये जो विज्ञान भवन है ना, उसके पास में एक भवन, छोटा सा राजयोग भवन पहला बना, सबसे पहला शायद 71 में वही बना, तैयार हो रहा था, और उसमें केवल 12 लोगों की व्यवस्था रहने की, 12 अभी भी शायद 12 ही रहते हैं, ठीक किया है उसको, रिपेयरिंग किया है दोबारा। लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो दीदी ने कहा कि पहला योग शिविर यहां शुरू करेंगे, गुजरात की इन्वेंशन थी, हमारी वेदांती बहन ने योग शिविर शुरू कराया था गुजरात में। तो दीदी कहे गुजरात से ही पहले पहले यहां 12 लोगों को आमंत्रित करना है, और 12 प्रोफेसर पाटन से, मेहसाना से, इसी नजदीक के ही 12 प्रोफेसर पहले पहले आए हैं योग शिविर करने, पहला शिविर। और इतना हम लोगों के ऊपर हर चीज, नियम मर्यादाएं, कहाँ खड़ा होना है, कैसे भोजन करना है, कितना साफ स्वच्छ रखना है, एक एक चीज ऐसे सिखा रही है, कोई बोलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े VIP बाबा के घर में आ रहे हैं, उनके ऊपर एक यहाँ के वातावरण की छाप पड़नी चाहिए, ज्ञान सुनाने वाले भले सुनाए लेकिन यहाँ के वातावरण पर का प्रभाव, सचमुच उससे 12 के 12 ही ज्ञान में चले, सब निकल आए ज्ञान। और उसके बाद उनके परिवार के अभी भी बच्चे सारे, मेरी नया बहन है उधर कुलाबा में, गायत्री बहन है, उनकी बच्चियां सब समर्पित हो गई, बच्चे भी समर्पित, ऐसे ऐसे परिवार योग शिविर से शुरू हुए। तो बात दीदी का एक नियम मर्यादाओं में कितना दृढ़ रहना है, लेकिन दूसरों को पहले नहीं सिखाना, कई बार दूसरों को हम ज्यादा सिखाते हैं खुद नहीं करते। उनका एक लक्ष्य रहता था, जो हम दूसरों को कहते हैं पहले हम करेंगे, खुद करना हर बात में खुद आगे। अगर नाइट क्लास हुआ है तो सबसे पहले खुद डायरी पेन लेकर के आगे आगे जाना, और सबको कहना अरे घंटी बज गई दीदी जा रही क्लास में, सब भाग भाग के आ जाओ, कोई क्लास नाइट क्लास भी मिस नहीं कर सकता। अमृत वेला तो मिस ही नहीं कर सकता, क्यों खुद कराने के लिए बैठती, नमाज शाम के समय आधा घंटा, क्या पावरफुल योग पांडव भवन का, दीदी खुद ऐसी दृष्टि देती। न शाम का योग मिस हुआ, न सवेरे अमृत वेले का, न मुरली क्लास, न नाइट क्लास, हर दिनचर्या एक्यूरेट रहनी चाहिए, टाइम की इतनी पेंचुअल थी कोई भी बात में, कितनी बड़ी आयु में भी हर बात में रेगुलर पंचुअल, और कोई को भी ऐसे अलबेला नहीं देख सकती। और अगर अलबेला हो जाए क्लास में ना आए, योग में ना आए, तो चुपचाप कान में मंत्र देती, कान में मंत्र देती कि देखो ब्राह्मण जीवन की उन्नति के केवल दो ही साधन बाबा ने दिए, एक पढ़ाई है एक योग है। अगर तुम अमृत वेला योग नहीं कर रहा है, मुरली में अटेंशन नहीं दे रहा है, तो समर्पित क्यों है, मधुबन में क्यों है, जाओ दुनिया में पढ़े दुनिया, यहां तो मजदूरों से भी काम हो सकता है, यहां कोई सफेद ड्रेस और भोजन के मजदूर थोड़ी हो तुम। इतना प्यार से मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हम सबको रेगुलर पंचुअल ऐसा बनाया कि 5 मिनट भी आगे पीछे ना हो, खुद एक्यूरेट। कहती थी टीचर आ गई और स्टूडेंट बाहर बाद में आ रहे हैं, ये कौन सा नियम है तुम्हारा, टीचर के पहले क्लास में पहुंचना ही है। बाबा के समय तो बाबा अगर आ गया क्लास में तो कोई भी बाद में नहीं आ सकता, नियम था बाहर खड़े रहो। बाबा क्लास में आ गया तुम बाद में आ रहे हो। और दीदी वही नियम पर चली, कोई भी अगर बाद में आता है तो क्यों आ रहे हो लेट, नहीं आ सकते अंदर, बाहर जाओ। कायदे नियम थे और उन नियमों में ऐसा बांध दिया जो हम लोगों का एक एक पल सफल कर लिया। आलस्य अलबेलापन बहानेबाजी सब खत्म। नहीं तो ब्राह्मणों में तीनों चीजें बहुत ज्यादा हैं। एक आलस्य है सुस्ती के कारण, सुबह सुबह बिस्तर नहीं छूटता, आएंगे मुरली में क्लास में तो भी ऐसे ऐसे करेंगे। अमृत वेले भी देखो तो कितने लोग, बाबा एक हठयोगियों का म्यूजियम का मिसाल देता है ना, जयपुर में एक हठयोगियों का म्यूजियम है, छोटे छोटे मॉडल बनाए, कोई उल्टा टंगा हुआ है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। बाबा कहता मेरे बच्चों का सवेरे सवेरे म्यूजियम बड़ा अच्छा दिखाई देता है, योग में बैठते हैं तो कोई ऐसे लटका है, कोई ऐसे लटका है। तो दीदी का बड़ा इस पर ध्यान रहता था, हर चीज एक्यूरेट। तो हम सब ईश्वरीय नियमों को, इन मर्यादाओं को यथार्थ समझ करके अपने जीवन को इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हमें आप 5-7 मर्यादाएं जो बाबा ने प्रैक्टिकल हम सबको बहुत सरल शब्दों में बताई है, मुरली में आती है बार बार, लेकिन शायद मर्यादा के रूप में कईयों का ध्यान न जाता हो। पहली मर्यादा है हमारी स्मृति के लिए। स्मृति में हमारे क्या है, हमारे मेमोरी में क्या भरा हुआ है। कई बार हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं लेकिन जो पास्ट की स्मृतियां हैं, जो भी कर्म हुए हैं, जो भी कोई ऐसी संस्कार बने हुए हैं, वो भूलते नहीं हैं। वो बार बार उनको स्मृति में आते हैं, वो दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, योग लगने नहीं देते। बाबा ने हमारे स्मृति के लिए एक बाउंड्री बना दी, बच्चे जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, उसको सोचना नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसे कई तो पास्ट को सोच सोच करके अपनी खुशी को गायब कर देते, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। अरे बाबा कहता है वो तो देह मान के कारण हुआ ना, परवश स्थिति में हुआ, जानबूझ के थोड़ी हुआ। इसलिए बीती हुई बातों को बार बार रिवाइज नहीं करना है, फुल स्टॉप। और अगर नहीं भुला पा रहे हो तो क्या करो, एक कागज पर लिख लो, बाबा के आगे बैठो, बड़े सच्चे दिल से लिखो और बाबा की भंडारी में बाबा को स्वागत ऐसे दे दो, बाबा ये ले लो, कहता ना बोझ दे दो मुझे। तो जो बीती बातों का बोझ है उसको देख करके स्मृति स्वरूप बनने के लिए वर्तमान में जीना, कल क्या होगा कल की चिंता नहीं करनी है। बीता हुआ इतिहास, आने वाला रहस्य, हम क्यों चिंतन करें। इतिहास तो लिपट गया, रेल में चला गया, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, हम उसका चिंतन नहीं करते। और जो रहस्य है, हम सब जानते हैं बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है कि बच्चे ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, कल जो होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा, तुम बच्चे उसका चिंतन नहीं करो, तुम अपने श्रीमत के अनुकूल मर्यादा के अनुसार चलते चलो, कल की चिंता नहीं करो, न कल की चिंता है न काल की चिंता है, निश्चिंत बाबा ने बना दिया। वर्तमान को हम अगर अच्छा श्रीमत अनुसार चला रहे हैं, नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता से चल रहे हैं, तो उस वर्तमान का ही तो दर्पण कल है, जो होने वाला है वही तो आज का ही तो कल होगा। इसलिए स्मृति स्वरूप बनने के लिए जो भी बातें स्मृति में रहती हैं, कई बार देखेंगे ना कहेंगे बाबा की मुरली याद नहीं रहती, सुनेंगे 5 मिनट के बाद बाहर गए भूल गए, लेकिन वैसे दुनिया की बातें, संसार समाचार, लौकिक की बातें इतनी याद रहती हैं, जो पूरी कहानी जैसे अंदर खुल गई तो सुनना शुरू हो गई, घंटों बीत जाएगा बातें करते। जब तक उनको मिटाया नहीं है तब तक दूसरा रिकॉर्ड भरोगे तो खराब हो जाएगा। पहले उसको मिटाओ, भुलाओ, फिर बाबा का ये अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करो, इस स्वरूप में रहो। स्थिति बनाने का आधार श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। जिसको अपनी अच्छी स्थिति का ध्यान है वो अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहो, अच्छे सम्मान में रहो, बाबा ने हमें क्या बनाया है, क्या थे क्या बनाया है, उस नशे में रहो, खुशी में। अच्छी स्मृतियां अच्छी स्थिति निर्माण कर देती हैं। स्मृति के साथ साथ हमारी दृष्टि कैसी है। शायद जब बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने हर बच्चे की दृष्टि का पहले ऑपरेशन किया। जो क्रिमिनल दृष्टि थी, देह को देखना, किसी के रूप को देखना, किसी के रुपये को देखना, किसी की चमड़ी को देखना, किसी की धमड़ी को देखना, बाबा ने कहा बच्चे इसका ऑपरेशन मैं कर देता हूं। दोनों चीजें नहीं देखना, दो ही चीजें व्यक्ति को आज अपने में फंसा रही, आकर्षित कर रही है, किसी का रूप, किसी की रुपया। बहुत अटेंशन देना, इसके लिए बाबा ने मर्यादा बताई है। बच्चे केवल आत्मा को देखने का अभ्यास करो। हम सब एक घर से आए हैं, हम सब आत्माएं अपना अपना खेल कर रही हैं, पार्ट बजा रही हैं। इसका इतना अच्छा अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने, यही एक मेहनत का अभ्यास किया और शिव बाबा के आने के बाद नहीं किया। लेकिन 1932, चार साल पहले, जब बाबा का गुरु था, गुरु कहता था ध्यान करो, एकांत में बैठो, तो कहते थे मैं एकांत में बैठता हूं ये मन बहुत भटकता है, नहीं मानता है। तो बाबा अपनी दरबार लगाते थे, रोज बैठ करके उनसे बातें करते, हे मेरे मन वजीर, मैं आत्मा बादशाह हूं, तुम बादशाह की भी नहीं सुनता, तुमको क्या चाहिए, तुम मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता, तुम क्यों भटकता है, तुम क्यों मेरे पुरुषार्थ में, मेरे मार्ग में दखलंदाजी दे रहा है। बाबा वो सिंधी शब्द यूज करते थे, कितना पुरुषार्थ करके मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पक्का कह लिया। संबंधों में भी लोग जो बाबा को अपने उस नजर से देखते थे, संबंध के नजर से, वो सब भूल गए, सब आत्मा है। तो दृष्टि में केवल आत्मिक दृष्टि बन जाए, रूहानी दृष्टि बन जाए, जिसको भी देखो उसके रूप पर, रंग रूप पर ध्यान न जाए, ये आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, खेल खेल रही हैं, एक ही घर से सब आए हैं, किसी अलग अलग ड्रेस पहनी है, एक की ड्रेस दूसरे की ड्रेस से नहीं मिलती, एक का फेस दूसरे के फेस से नहीं मिलता, कुछ न कुछ अंतर जरूर दिखाई। कितना वैरायटी, वंडरफुल नाटक बना हुआ है, और नाटक में सबसे हीरो एक्टर्स आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये दृष्टि शुद्ध पवित्र बन जाएगी, समान दृष्टि हो जाएगी, किसी को उस नजर से नहीं देखेंगे, बड़े हैं, साहूकार हैं, ये गरीब हैं, ये ऐसे हैं, ये सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। दृष्टि के बाद आती है हमारी सूक्ष्म वृत्तियां। वृत्तियां तो बहुत चंचल, और वृत्तियां कैसे बनती है पता है? क्योंकि वृत्तियों से वाइब्रेशंस बनते हैं, वाइब्रेशंस से वायुमंडल बनता है। आज मधुबन का जो इतना शक्तिशाली वायुमंडल है, उसका मूल कारण है बाबा की, दादियों की, बड़ों की सूक्ष्म वृत्तियां, बड़ी शुभ वृत्तियां, अनासक्त वृत्तियां, उपराम वृत्तियां, वैराग्य की वृत्तियां। उन वृत्तियों के आधार से यहाँ का वातावरण, यहाँ के वाइब्रेशन चार्ज हो गए और वातावरण शक्तिशाली बन गया। बाबा ने वृत्तियों के लिए भी मर्यादाएं खींची, लकीर बनाई, बच्चे इन वृत्तियों को, जो वृत्ताकार में घूम रही हैं, जो संकल्प बार बार हम करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, बार बार उसी का चिंतन करते हैं, हमारी वृत्तियां बन जाती। कहते एटीट्यूड इसका ऐसा है, देखने का नजरिया इसका ऐसा है, और बहुत सूक्ष्म है, बहुत चंचल है। संकल्प को हम ब्रेक दे भी दें, लेकिन वृत्तियां कहां कहां, यहां बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, करा रहे हैं, हम कई बार एक बात बहुत गहराई से नोट किया, जब बाबा आते थे और मैं डायरेक्ट टाइप करता था, फुल अटेंशन होता था, कोई खांस रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है सभा में। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर ओमचंद डायमंड हॉल में अब्दुल कलाम जी आए थे, उस समय वो प्रेसिडेंट नहीं थे, सलाहकार थे, लेकिन उनकी बहुत सुरक्षा थी, वैज्ञानिक थे बड़े, तो बहुत सुरक्षा थी, और बाबा से मिलने के लिए उनको बिठा दिया आगे आगे। कुमारों का ग्रुप था बाबा के सामने, मुरली चल रही थी, बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, लेकिन बीच में दो कुमार बहुत पता नहीं क्या उनको नशा चढ़ा, वो ऐसी छलांग मारी नीचे से, जो बैठे हुए सिक्योरिटी वाले अपने भाई बैठे, सिक्योरिटी बाहर के तो बाहर खड़ी थी सारी, उनको ऐसे धक्का दे करके और सीधा बाबा के पास पहुंच गए। और बाबा के पास पहुंचे तो सारी हमारी अपनी सिक्योरिटी पीछे दौड़ी और दौड़ करके उनको ऐसे ही उठा लिया, डंडा डोली ऐसे कर लिया, और सारे हाल में हंगामा जैसा हो गया, हलचल हो गया, सारी उनकी पुलिस सिक्योरिटी ऐसे खड़ी हो गई सभा में, क्या हो गया। अब उसको उठा के ले गए बाहर फटाफट कुमारों को। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, एक मिनट में पूरी सभा को उस दृष्टि से शांत कर दिया। अब मैं टाइप कर रहा था मुरली, मुझे कुछ पता नहीं चला हुआ क्या आखिर, इतना टेंशन मेरा बाबा की तरफ था, क्योंकि एक शब्द भी मिस हो गया तो मुरली नहीं ठीक बनेगी, दोबारा पढ़ना पड़े, सुनना पड़े, तो मैं तो बाबा को ही देख रहा था। लेकिन जब बाबा ने कहा एक मिनट सब साइलेंस हो जाओ, तो ऐसा सन्नाटा हो गया, सब चुप हो गए। तब तो मेरा ध्यान गया कि मैं तो टाइप कर रहा था, ये हुआ क्या, माना ऐसा अटेंशन था। लेकिन उसके बीच में भी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब होते भी वृत्तियां बहुत सूक्ष्म भटकती हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं, जहां कोई संबंध होगा, जहां से कोई ठुकराया गया होगा, जहां से कोई प्राप्ति हुई होगी, जहां कोई आसक्त हुए होंगे, वहां पर ही बुद्धि वृत्तियों के रूप में भटक जाएगी। इन वृत्तियों के लिए मर्यादा है कि व्रत लो, जितना व्रत ले लोगे उतना वृत्तियां चेंज होती जाएंगी। व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, भाई खाना नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, निर्जल रहेंगे, ये करेंगे। बाबा ने वो तो मना नहीं किया, बच्चे जो करना करो उसकी बात अलग है, लेकिन ये व्रत लो कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, एक कोई देखना है, एक से ही सुनना है, एक की बात श्रीमत पर चलना है। व्रत ले लो, अंगूठी पहन लो आठ रत्नों की, समय पर सब शक्तियों का प्रयोग करना है। समय बीत गया फिर शक्ति याद आई तो क्या फायदा। इसलिए जब हमारा व्रत है कि मुझे और कोई को देखना ही नहीं है, बाबा ने मना किया है, कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो व्रत लेने से हमारी सूक्ष्म वृत्तियां पवित्र होती जाती हैं, अनासक्त होती जाती हैं, उपराम होती जाती हैं। और वर्तमान समय बाबा बच्चों से विशेष उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे अभी अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से इस विश्व के वातावरण को चेंज करें। मनसा सेवा जिसको बाबा कहते हैं, जितनी हमारी मनसा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, और उसके आधार से वृत्तियां एकाग्र हैं, स्थिर हैं, उपराम है, उससे नया अच्छा वातावरण बनेगा। अपने आप एक स्थान पर बैठे हम पूरे विश्व तक अपने अच्छे वाइब्रेशंस फैला, इतनी एकाग्रता हो जाए। तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, और वृत्ति के बाद मोटे शब्द में बोल की मर्यादाएं बहुत सुनाई है। बाबा की अव्यक्त मुरलियों में भी आप देखेंगे बहुत सारी मुरलियां बाबा ने बोल पर चलाई है। बोल बड़े अनमोल हैं, बोल ऐसे हों जैसे सत्य वचन महाराज कहा जाता है, जो बोलो सत्य हो जाए। कितना बोलना है, शाम को अगर बैठो तो चेक कर सको मैंने सुबह से रात तक कितना बोला, गिनती किए जा सके। लेकिन कई बार आप देखेंगे साधारण रूप में भी बोल पर बहुत कम लोगों का ध्यान है, जो आया बोलते हैं, जब आया बोलते हैं, बहुत सारी एनर्जी नष्ट होती है इससे। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर स्लोगन दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोलो, जो जरूरी है वो बोलो, नहीं तो चुप हो जाओ। अगर किसी बाबा के बच्चे ने इस पर ध्यान दिया कि बाबा ने कहा है बच्चे मधुर बोल बोलो, सरल शब्दों से बात करो, बहुत अच्छी छाप आप किसी पर डाल सकते हो। टू मच बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अधिक बोलने वाले कुछ न कुछ तो नीचे ऊपर बोलेंगे ही। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, बोल के लिए बहुत अच्छी मर्यादाएं हैं, सबको इतना स्नेह से सम्मान से वही शब्द उच्चारण करो जो उसके उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले हों। हमारे बोल से किसी की खुशी गायब हो जाए, किसी का उमंग उत्साह खत्म हो जाए, किसी कोई पुरुषार्थहीन बन जाए, कोई हमसे किनारा कर ले, बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाता है, उसकी बद्दुआएं मिलती हैं। हम तो कहते हम तो ऐसे ही बोल दिया था, हमारा कोई भाव थोड़ी था, निकल गया, ऐसे निकल गया क्या? इतनी भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जो बोलना चाहे वही बोले और जितना बोलना चाहे उतना बोले। मैं एक बात का बहुत ध्यान देता हूं, अटेंशन रखता हूं। कोई कहता है भाई 10 मिनट का समय है, आप 10 मिनट में स्टॉप कर देना क्लास या कोई भी बात। कहीं कहीं कहते 5 मिनट का समय है। मैं यही सोचता हूं 5 मिनट की बजाय मैं 4 मिनट में पूरा कर दूं। 6 मिनट नहीं होना चाहिए, उसके संकल्प नहीं चलने चाहिए। क्यों हम अधिक बोल रहे हैं जब नियम है, उनके बने हुए हैं, टाइम टेबल सेट है। हमारे जगदीश भाई ने हम सबको एक बात बहुत पक्की कराई है, कितनी रेगुलरिटी और पंचुअलिटी होनी चाहिए कुछ भी हो। एक बार हमारी मीटिंग चल रही थी, वार्षिक मीटिंग होती थी, जगदीश भाई जी उसको हैंडल करते थे। मीटिंग का टाइम जो था 9:30 से 10 ही हो, 10 बजे मीटिंग प्रारंभ हो जाएगी, और जगदीश भाई जी इतने पंचुअल आकर के 9:30 बजे योग में बैठ गए। कोई नहीं सभा में, 10 बजे तक भी थोड़े लोग आए थे। जगदीश भाई ने 10 बजे जो देखा और तुरंत माइक मंगाया और कहता है मीटिंग शुरू कर देते। भाई अभी आए नहीं भाई साहब कोई, वो मुझे पता नहीं, नहीं आए तो मैं क्या करूं, हमारा तो टाइम है। टाइम पर शुरू करना, टाइम पर पूरा करना, 5 मिनट भी कोई के संकल्प न चले, इतने एक्यूरेट थे, पंचुअल थे हर बात में। ऐसा सिखाया तो एक बार क्या हुआ, यूथ का प्रोग्राम चल रहा था शांतिवन में, और मेरा क्लास रख दिया उन्होंने 4 बजे। यूथ वालों ने कहा 4 बजे हमारे सब यूथ आ जाएंगे। मैं कहूं बहन जी 4 बजे नहीं आते हैं, आप 5 बजे रखो। भाई जी युवा हैं सब और एकदम एक्यूरेट हैं। मैं तो समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे, और वो क्लास जो पहले दोपहर का छूटना था 2:30 बजे छूटा उनका। अब गए हैं कमरों में, गए हैं, कोई नहाता है, कोई स्नान करता है, कोई तो रेस्ट भी कर लेता। मैं 4 बजे गया, केवल माइक वाला, लाइट वाला, कोई भी व्यक्ति नहीं, और मैंने ऐसे ही बोला आप लोग सामने बैठो दोनों, मेरे को माइक दे दो। अरे भाई जी आने तो दो ना। क्यों आने दे, हमको 5 बजे तक ही रहना है, 5 बजे तो हमको स्टॉप करना, दूसरा क्लास है किसी का, हमको जो बोलना है बोल देते हैं, आप रिकॉर्ड कर लो, सुन लेंगे ये लोग। मैंने शुरू कर दिया, 5 आए 10 आए 15, जब माइक में आवाज गई तो आने लगे लोग, और ज्यों 5 बजा 4 से 5 मैंने ओम शांति कर दी। अरे भाई जी अभी बंद नहीं करो। हमने कहा नहीं, दूसरों के संकल्प नहीं चलाना, हमारे पीछे वाला हम इंतजार करेगा कि भाई जी कब क्लास पूरा करेंगे, मेरा क्लास का टाइम हो गया। ऐसा अपने आप को ढालना है, ये कोई हमारा जिद नहीं है, लेकिन हमारी दादियों ने भी यही सिखाया। जानकी दादी अगर कहीं जाने के लिए गाड़ी वाले को बोलेगी भाई इतने बजे मुझे गाड़ी चाहिए, अब वो गाड़ी आ गई है, बेचारा इंतजार कर रहा है, वो तैयार होकर के आए। दादी कहती नहीं, 5 मिनट पहले मुझे टाइम पर पहुंचना है। ड्राइवर के संकल्प नहीं चलने चाहिए गाड़ी चलाने वाले के, कि हमको टाइम दिया और अभी तक आए नहीं। इतनी एक्यूरेट थी, इतनी एज में भी दादी ने किसी के संकल्प नहीं चलवाए। ये हमारी मर्यादाएं हैं। और इस ब्राह्मण जीवन में जितना आप एक्यूरेट रहो, पंचुअल रहो, रेगुलर रहो, उतना शोभा है। सबकी दिल जीत लेते हैं, कितना एकदम एक्यूरेट है, जरा भी अलबेले नहीं है, चल रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। हार्ट वालों को कहा जाता थोड़ा धैर्यता से चलो, ज्यादा नहीं फास्ट करो कुछ भी, लेकिन टाइम का तो टाइम का कदर होना ही चाहिए। तो बोल का बहुत बड़ा हमारा रोल है इस ईश्वरीय परिवार में। बोल से हम पूरे संगठन को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। बाबा के मधुर बोल देखो, दादियों के बोल देखो, कितना सम्मानजनक बोल। ऐसे नहीं कहा मैं बड़ी हूं तो छोटा है, बहुत रिस्पेक्ट से एक दूसरे को सम्मान देते हुए दो शब्दों में समझ दी, शिक्षाएं दी। अगर अव्यक्त बाबा की मुरलियों को आप ध्यान से सुनेंगे ना, शिक्षाएं बाबा ने सब दी हैं, लेकिन शिक्षाएं देने के पहले जो उनको सम्मान की याद दिलाई है, जैसे बाबा कहते ना, कहीं डॉक्टर को अगर इंजेक्शन लगाना हो तो डायरेक्ट नहीं लगाता है, पहले थोड़ा सा उस पर स्प्रेट लगा के नरम करके फिर लगाता है तो उसको दर्द कम हो। बाबा ने भी हम बच्चों को सब प्रकार की शिक्षाएं दी, डोज दिया, लेकिन डोज देने के पहले धरनी तैयार किया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया। एक दिन मैं एक मुरली पढ़ने लगा, बहुत ध्यान गया, क्या बाबा कहना चाहता है, इतना बच्चों को चढ़ा रहा है, इतनी ऊंची ऊंची बातें, और बाद में इशारे में इतना छोटी सी शिक्षा दी, बच्चे ये शोभा नहीं देता। आप बच्चों के लिए आप इतनी ऊंची आत्माएं, इतनी महान आत्माएं, देव आत्माएं, ब्राह्मण कुल की श्रृंगार, ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं, आपके चलन में शोभा नहीं देता, साधारण बोल ठीक नहीं है। शिक्षा दी लेकिन बहुत ऊंचा सम्मान दिला करके। तो हम सभी भी आपस में अभी कुछ समय से एक बार लहर चल रही बाबा की मुरलियों में, शिक्षाएं दो लेकिन पहले उसको क्षमा करो, उसकी गलतियों को नोट करके फिर शिक्षा नहीं दो, नहीं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। क्षमा करो, हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। अंदर से अगर उसको क्षमा कर दें और फिर कोई बात कहेंगे तो उसको सहज स्वीकार करेगा। कर्मों के लिए मर्यादाएं हैं, कर्म करने की छूट है लेकिन कर्म बंधन न बने। कर्म संबंध में हम आए और कर्म करें, कर्तापन से न्यारे हो जाएं। कर्म और व्यवहार, इन दोनों के लिए मर्यादाएं। व्यवहार हमारा इतना मिलनसार हो, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी शक्ति जिसको बाबा कई बार वर्णन करते हैं, एक बार बाबा के सामने विदेशी लोग बैठे थे तो बाबा ने उसे अचानक पूछ दिया, बच्चे सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तो कोई ने कहा सहन करने की शक्ति, कोई ने कहा परखने की शक्ति, कोई ने कहा सामना करने की शक्ति। बाबा सबके सुना, सबसे पूछा एक एक से। बाद में बाबा उनकी विशेषताएं सुनानी थी और कुछ यहां उनको एडजस्ट करना था, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति एडजस्ट करने की शक्ति, एडजस्ट कर लेना हर बात में। क्योंकि जब विदेशी लोग आते और यहां अगर ज्यादा संख्या होती, ज्यादा भीड़ होती, एक बार पट बना करके उनको सुला दिया। अब उनकी इतनी बड़ी बड़ी अटैचियां, उनका इतना बड़ा बड़ा सामान, फिर भी कोई कंप्लेन नहीं किया, उसमें एडजस्ट कर लिया उन्होंने। तो बाबा ने कहा बच्चों में बहुत अच्छी शक्ति है एडजस्ट करने की शक्ति। कई बार कैसी भी बातें होती हैं, अच्छा स्थान नहीं मिलता है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो हम चाहते हैं, जो भावनाएं लेकर के आते हैं, उस प्रकार की हमें सहूलियत नहीं मिलती, हम अपसेट हो जाते हैं। और इतना अपसेट हो जाते हैं जो बाबा क्या पढ़ा रहा है, क्या मिल रहा है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। हर परिस्थिति में हर बात में समय को समझ करके उस परिस्थिति को उस काल को समझ करके स्वयं को एडजस्ट कर लेना और एडजस्ट करके अपनी स्थिति को एक रस रखना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो व्यवहारिक जीवन में हर समय अपने आप को एडजस्ट करना सीखें। कोई ये न कहे पता नहीं इनको क्या अहंकार है, भाई सब ऐसे चल रहे हैं तो आप भी ऐसे चलो, अलग से क्यों दिखा रहे हैं। तो हम सबको ध्यान देना है, व्यवहार में सरलता है, मधुरता है, मिलनसारिता है, एडजस्ट करने की पावर है, ये सब मर्यादाएं हैं ईश्वरीय, सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और कर्म है ही सुख देने सुख लेने के लिए, दुआएं लेने और दुआएं देने के लिए। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहता और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, दुआ दो दुआ लो। कोई बददुआ भी देता है तो भी आप उसको दुआ में चेंज करो, उसको ग्रहण नहीं कर लो, दुखी नहीं हो जाओ, परेशान नहीं हो जाओ। कई बार ऐसे होता है चलते चलते कोई ना कोई कुछ बोल देता है, अपसेट कर लेते हैं, हमारे अंदर से निकलता है ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो बच्चे कोई बात नहीं, कोई हिसाब किताब पूरा हो गया तुम्हारा, कोई पिछले जन्म में कुछ होगा, आगे पीछे कुछ किया होगा, पूरा हो गया। आप अपने को डिस्टर्ब नहीं करो। हम सबको वर्तमान समय अपनी स्थिति को इतना स्टेबल करना है कि कभी भी डिस्टर्ब ना हो, मूड कभी भी बदले नहीं। नहीं तो एक बार हमारे भ्राता जी ने किताब बनाई और ये किताब लिखा सारे दिन में, जगदीश भाई थे ना, किताब नहीं नहीं बनाते थे, कितने मूड बदलते हैं व्यक्ति अमृत वेले से रात सोने तक। तो उन्होंने बहुत वैरायटी फेस फोटो में बनाए, पहला पहला पेज पर 56 मूड सवेरे उठने से रात सोने तक व्यक्ति के परिवर्तन होते हैं। और बाबा कहता है बच्चे कभी मूडी नहीं बनो, मूड अपसेट हो जाए और मूडी के लिए कभी भी कभी, शायद बाबा की साकार मूर्तियां याद होंगी, बाबा सिंधी में उसको सांडा कहता है, वो जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट आप लोग क्या बोलते हैं उस गिरगिट को, कलर बदलता है जो, सांडा बोलते। अगर वो जा रहा है छिपकली जैसा होता है, ऐसे चलता है रोड पर, आप उसको कंकड़ मारो पत्थर मारो भागेगा नहीं, वो उतना अहंकार होता है उसके अंदर, वो ऐसे सिर ऊपर करेगा, पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सारी शक्ल बदलेगा। तो बाबा कहता मेरे बच्चे भी कभी कभी गिरगिट जैसे शक्ल बदलते हैं। खुशनुमा रहना, एक रस रखना, क्यों अपनी शक्ल बदल रहे हो छोटी छोटी बातों में, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, यहां ऐसे हो गया, ऐसी स्थिति बनाओ, एक रस खुशनुमा स्थिति। नहीं तो अहंकार की निशानी है ना। अभी वर्तमान समय सूक्ष्म में अहंकार को बहुत चेक करना, जो बाबा बार बार मूलियां चला रहे ना, तीन प्रकार का मैं, दो प्रकार का खाचा, उस दिन मैंने क्लास कराया मैं तीन प्रकार का मैं, एक मैं तो आत्मा हूं, समान में रहना, स्वभाव अच्छा है, वो अच्छी मैं है, वो तो हम प्रयोग करते हैं। लेकिन एक मैं है तुरंत अपना अभिमान आ जाता है, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी प्लानिंग अच्छी, मैं। और बाबा कहता मैं अपना स्विच बंद कर देता हूं, सुनता ही नहीं हूं किसी का, मैं टीवी का स्विच बंद कर देता हूं, ये मैं कर रहा है। अरे भगवान का कार्य है, कराने वाला करा रहा है, सब कुछ हो रहा है, अपनी महिमा करता जाता है, मैंने ये किया। वो अहंकार दिखाता है अपना, बुद्धि का अभिमान। और दूसरा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर शायद कोई योग्यता ही नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मेरी क्या वैल्यू है, निराशा, दिल शिकस्ती, एकदम उदास निराश, ब्लड जैसे रुक गया उसका, उमंग उत्साह का। तीसरा मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई देवता वेवता नहीं बनना, जो बाबा बनाना चाहे बनाए, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, ठहरा पानी। कैसा होगा, बदबू मारेगा कि नहीं। लेकिन रेगुलर है, पंचुअल है, क्लास में आएगा, लेकिन जैसा है वैसा ही है, कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई उसको ये नहीं ये करूं वो, कोई अंदर प्लानिंग नहीं। बाबा कहता है ये भी बदबू करेगा, ठहरा पानी है। अरे उमंग उत्साह रोज बाबा दिला रहा, रोज नए नए संकल्प करो। मैं तो अपनी दादी को देखता था, इतनी बड़ी आयु में भी दादी प्रकाश मणि, क्या उमंग क्या उत्साह, ऐसा नशे से बोलती थी ये करना ये करना ये करना। एक एक जो भी हमारे मेगा प्रोग्राम चले ना, तो एक दिन मेरे साथ ही पहली रूरियान होती थी, जो भी होगा मेरे को सुबह मुड़ने के बाद बुलाएगी, हे राजू आज मुझे एक संकल्प आता है, बाबा के पास में बैठी मुझे एक संकल्प आया। तो कहते हैं मुझे संकल्प आया कि अभी बड़े बड़े प्रोग्राम हम करें, एक एक लाख के प्रोग्राम करें। तो मैं दादी को देखा, मैं दादी अभी तो हमारी सभा में 5,000 लोग भी नहीं आते, अब आप कहती 1,00,000 लोग। नहीं बाबा मुझे बार बार टच करता है कि 1,00,000 की सभा होनी चाहिए, 1,00,000 की सभा होनी। तो मैं ज्यादा दादी की बात को काटता नहीं था, मैं दादी आपका संकल्प आया बाबा जरूर कराएगा। फिर थोड़ी देर के बाद और बड़े भाइयों को बुलाया, उनसे बात कर लिया, वो भी ऐसे ही उड़ा दिया कि दादी कोई एक्टर थोड़ी है, कोई फिल्म वाले थोड़ी है जिनको देखने लोग आएंगे हमारी सभा में, तो ज्ञान योग सुनने वाले आते हैं। मतलब सबने उस बात को समझ नहीं पाया दादी का उमंग उत्साह। लेकिन सरला दीदी अहमदाबाद वाली बैठी थी, उसको पता चला दादी कह रही 1,00,000 की सभा होनी चाहिए, बस उसने संकल्प ले लिया, दादी आपने कहा ना मैं गुजरात में अहमदाबाद में करूंगी 1,00,000 की सभा करूंगी। अब उसने प्लानिंग करना शुरू किया और दादी इतना खुश कि एक तो कम से कम समझा मेरी बात, दुआएं मिली उसको, और उसने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया जो पहली सभा में 2,00,000 लोग थे, और वो 2,00,000 लोग कैसे खड़े थे, और बहुत बड़ा ऊंचा एक रथ बनाया जिसमें केवल 3 दादियां, गुलजार दादी, जानकी दादी और बड़ी दादी प्रकाशमय दादी, तीनों दादियां रथ पर, और पूरे ही जहां जहां लोग बैठे थे उसमें रथ घुमाया, मैं भी उसमें था सभा में। और उसके बाद वो मचान बनाया था बहुत ऊंचा, उस पर तीनों दादियों को चढ़ाया और तीनों ने वहां से भाषण किया। बस दादी को इतना खुशी, इतना नशा चढ़ा, उमंग उत्साह आ गया, अभी तो मुझे किसी भी स्टेट को नहीं छोड़ना है, हर स्टेट में 1,00,000 की सभा होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। शुरू हो गया मेगा प्रोग्राम। अब जब नहीं कोई करने के लिए तैयार हो, मेरे को बुलाए, कहते इसको तुम फोन करो, मेरे सामने फोन करो, खुद बैठी है, तुम फोन करो, बोलो दादी का विचार है, मैं फोन करूं, अगर वो थोड़ा ना नू करे तो दादी अब मुझे फोन दे दो। और इतना प्यार से, रे तेरे मैं बैंक में इतना पैसा रखा है, मर जाएगी क्या करेगी उसको, सफल कर ले सीधा ही, सफल कर, ना नहीं करना, दादी को संकल्प आया है वहां होना चाहिए, चुप। अब दादी की बात क्या काटेगी, अच्छा तुमको नहीं करना, हैंड्स नहीं है तुम्हारे पास, पैसा तो है, मैं हैंड्स भेजती हूँ तुमको, रोजी जाओ, वो महेंद्र भाई थे, महेंद्र भाई जाओ भोपाल वाले, ये सब बहुत एक्टिव थे, दादी का कहना जो कहे दादी। पूरा पूरा मेला हर स्टेट में करवा दिया, फिर बाद में मधुबन वालों को बोला कि तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, दादी हम क्या करें, अरे सारे आदिवासी गांव में रहते हैं, जाओ सबके पास, सबको बोलो दादी बुला रही है, दादी तुमको ब्रह्मा भोजन खिलाएगी, ऐसे ही जाओ जाओ गांव में, कम से कम 50,000 तो इकट्ठा करो। और इतना सब गए, चारों तरफ निमंत्रण दिया, आदिवासी लोग एकदम भील लोग, 45,000 इकट्ठा हो गए, ओम शांति भवन छोटा, चारों तरफ से वही दिखाई देते थे। और दादी इतना खुश, कहती है मैं इनको अपने हाथ से गिफ्ट दूंगी, क्या नशा था, ब्रह्मा भोजन अच्छा बनवाया, गिफ्ट उनके लिए तैयार कराई, ये उमंग उत्साह था। क्यों उमंग उत्साह नहीं आता ब्राह्मणों को, अरे बाबा की जो नियम मर्यादाओं पर चलते हैं उनका उमंग उत्साह कम हो ही नहीं सकता, और अगर उमंग उत्साह नहीं है तो कहीं ना कहीं मर्यादा में लीकेज है, चेक करना। संपूर्ण ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चल रहे हैं, श्रीमत को यथार्थ समझ करके पालन कर रहे हैं, उनका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे उमंग उत्साह में रहना, उमंग उत्साह एक ब्लड है जो जैसे आर्टरी कोई रुक जाए तो कहते हार्ट की बीमारी हो गई, आर्टरी क्या है, ब्लॉकेज हो गई। अगर ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, माना कहीं ना कहीं आर्टरी ब्लॉक है, हार्ट की नहीं मन की आर्टरी ब्लॉक हो गई। इसलिए सब लोग अपनी आर्टरी खोलो और खूब उमंग उत्साह से उड़ते बाबा की श्रीमत पर चलते चलो, कहो बाबा श्रीमत सिर माथे। मर्यादा कभी भी एक मर्यादा भी उल्लंघन नहीं करना, मुझे तो संपूर्ण पावन बन करके बिना धर्मराज की सजाओं के बाबा के साथ जाना है। संकल्प करो, कभी नहीं नेगेटिव संकल्प करना, पास तो आठ ही होते हैं, ये होता, बाबा की बातें ही बाबा को सुनाना शुरू कर देते हैं बच्चे, ये निराशा के संकल्प नहीं करो। ठीक है, अभी हम सब आधा घंटा योग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठना, लक्ष्य देंगे और उसी लक्ष्य के प्रमाण एक एक स्थिति का अनुभव करते जाना। 7:30 तक बैठेंगे, खुले खुले बैठो, भले देखो आराम से। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो। एक बहुत सूक्ष्म सितारा जो केवल अनुभव के नेत्र से ही देखा जा सकता है, अनुभव करो। मैं इस अकाल तक पर विराजमान चैतन्य शक्ति हूं, अपने दिव्य नेत्र से उस परम ज्योति सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा का इस सभा में आवाहन करो। वो ऑलमाइटी बाबा अपनी सर्व शक्तियों को मर्ज करके मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है, उनकी पवित्रता की शक्तियों का अनुभव करो। समानता का अनुभव इस भ्रकुटी आसन पर सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। मैं उनके स्नेह में समा गई। शांति के सागर के तले में चले जाओ, डीप साइलेंस। कितनी शीतलता है, कितनी शांति है। आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही है। ज्ञान सूर्य बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। बहुत सुखद अनुभूति, स्वीट साइलेंस। आत्मा को सातों गुणों से संपन्न बनाने के लिए ज्ञान सूर्य की किरणें लो। उन किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन रही हूं। ज्ञान सागर की किरणी पवित्रता के सागर की किरणी शांति के सागर की किरणी आत्मा पर डायरेक्ट अनुभव करो। अपनी भरपूर स्टेज में बैठो, संपन्नता की स्टेज का अनुभव करो। जैसा बाबा वैसा ही मैं स्टार चमक रहा हूं। वृक्षपति पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज, जिससे इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई है, वृक्षपति बाबा ने हम सबको महातपस्वी बनाया है। इस पूरे वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। मुझ आत्मा का एक एक संकल्प इस पूरे वृक्ष को शक्तियों के रूप में पहुंच रहा है। अपने रहम दिल स्वरूप से पूर्वजपन की स्मृति से अपनी पूरी वंशावली को सामने इमर्ज करो। सब दुखों से छूट जाए, त्रिदाता से मुक्ति का वरदान ले ले। सबका भला हो, सब सुखी हो, ऐसी सुख भावनाओं की सकास इस पूरे वृक्ष को दो। सभी अपने पूज्य स्वरूप में इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में अपने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कितनी आशाएं हैं, कितनी कामनाएं लेकर लंबी लंबी कतार में भक्त खड़े हैं। सभी अपनी दर्शनीय मूर्त के रूप में बैठकर नजर से निहाल कर दो। दर्शन देखकर प्रसन्न कर दो। कुछ समय के लिए अपनी सुई ठों निराकारी घर में मूल वतन में अपने निराकारी स्वरूप में स्वयं को अनुभव करो। जहां सर्वत्र शिव बाबा की किरणें फैली हुई हैं, स्व प्रकाशित ये घर असीम शांति, पवित्रता, स्नेह, शक्तियां चारों तरफ सागर की तरह लहरें आ रही हैं। चलो उसमें समा जाओ, संकल्पों को भी शांत करके परम धाम घर की असीम शांति का अनुभव करो।
राजू भाई जी, राखी के साथ मर्यादाओं का कंगन बहुत अच्छी तरह से मजबूत कराने के लिए, तो राजू भाई जी आपका दिल से शुक्रिया है, आभार है।